الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ہم لوگ عظیم لوگوں کے بارے میں آج کل سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان واقعات میں سے جو سبق ہیں وہ بتا سکوں، مگر ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ان سے دوبارہ گو تھرو کریں، ان سٹوریز سے، اور ان میں سے اپنے لیے سیکھنے کی باتیں لیں. ہر ایک کی زندگی سے اگر ہم کوئی ایک دو باتیں بھی سیکھ لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں. اور آج کل تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف کتابوں میں ان کی زیارت ہو سکتی ہے، ویسے ہم ایسے لوگوں کو پاتے نہیں ہیں. اور ہم نے جیسے کل بات کی تھی مالک بن دینار کی، تو اتنے شرابی اور اتنے دنیا کے اندر محو انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پلٹ دیا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف مائل کر لے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ خود اپنے آپ سے، نہ اپنی اولادوں سے، نہ کسی بھی انسان سے. چاہے اس کے حالات آج کتنے ہی خراب نظر آ رہے ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کب کون پلٹ جائے. ہاں، یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دے. کتنا بھی کوئی گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم نہیں جانتے کب کس کو ہدایت مل جائے. تو یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی دل کو بھی پلٹ دے. آج جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت جب تھا تو اس میں ایران کو فتح کیا گیا، اور وہاں کا جو آخری بادشاہ تھا وہ تو اس کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور لیکن وہاں کے جو جرنیل تھے، وہاں کے جو اور لوگ تھے یا اس کی جو فیملی تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئی، اور مال غنیمت بھی اتنا زیادہ آیا تھا. اب ان قیدیوں کے اندر اس بادشاہ کی تین بیٹیاں تھیں، اور ظاہر ہے قیدی اس وقت فروخت بھی ہوا کرتے تھے اور دیے جاتے تھے. تو یہ جو بیٹیاں تھیں بادشاہ کی، یہ بہت خوبصورت جوان، جب ان کو بانٹا جانے لگا، دیا جانے لگا، تو ذلت کے مارے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ دیکھ کے حضرت علی کو بڑا ترس آیا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شکست خوردہ قوم ہوتی ہے اس کے معزز افراد پہ ترس کھایا جائے. تو حضرت عمر اس بات سے انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اختیار دے دیں کہ یہ جس کے ساتھ بھی جانا چاہیں اور ان پہ کوئی زبردستی نہ ہو. تو حضرت عمر کو یہ تجوید حضرت علی کی بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک لڑکی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو پسند کیا، ایک لڑکی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو پسند کیا، ان کے ساتھ گئی. ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی کو اپنے خاوند کے طور پہ پسند کیا، ان سے پھر زین العابدین پیدا ہوئے تھے جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. اور ایک لڑکی نے محمد بن ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو پسند کیا، اور ان سے قاسم پیدا ہوئے، جو وہ مدینہ کے بڑے بڑے فقہا میں سے، سات جو بڑے فقیہ تھے ان میں سے ایک بنے. اب یہ جو میں نے پہلی لڑکی کا آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عمر کے بیٹے वो बहुत ही ज्यादा तकवा वाले थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समझ लें कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो उस तरह से ही करने की कोशिश करते, हर मामले में यानी उनकी सबसे ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करते थे, सबसे ज्यादा सुन्नतों को अपनाने वाले थे। तो उन्होंने, एक लड़की ने जब उनको पसंद किया तो इनसे ये सालिम बिन अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला बिन उमर खुद इतने तकवा बने, आगे इनका जो बेटा जो इस लड़की से पैदा हुआ वो भी सुभान अल्लाह, उनके भी क्या कहने कि वो इतने जाहिद आबिद थे, वालिद की निगरानी में तरबियत हासिल की, हजरत उमर के अखलाक और किरदार थे उनके अंदर। आप देख लें कि ये तीनों लड़कियों से कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, जिनके जोहद और तकवा की मिसालें दी जाती हैं। कहाँ वो ईरान की शहजादियां थी, कहाँ वो लौंडियां बन के आई, और फिर लेकिन लौंडी बनने में उनकी जो शान हुई, शायद शहजादियां भी होती तो उतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो थे हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला, इन्होंने अपने वालिद से पहले इल्म लिया, फिर उसके बाद मस्जिद नबवी में तो उस वक्त बड़े बड़े सहाबा कराम बैठे होते थे, उनसे इल्म लिया, जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अबू हुरैरा से, जैद बिन खत्ताब से, अबू राफे से, तो इस तरह बड़े बड़े सहाबा से इल्म लिया और ताबईन के सरदार कहलाए थे। अब आप देख रहे हैं ना कि कहीं कोई गुलामों की औलाद है, कहीं कोई किसी कनीज की औलाद है। वैसे तो ये कनीज नहीं थी, शहजादी थी इनकी वालदा, लेकिन फिर भी आप देखें कि कहाँ से कौन पैदा हो रहा है और उनका हसब नसब उनको कोई नुकसान नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ तो तकवा देखा जाता है। आज आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि इनका हसब नसब क्या है, लेकिन सबको इनके तकवा का पता है। ये इतने अजीम लोग थे, ये उन लोगों में से थे कि जिनसे काजी जो भी मुकदमा फैसला करना होता था तो पहले वो खुद गौर व फिक्र करते थे, फिर इनकी राय पूछते थे कि आप बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है, और जो अहले मदीना थे वो भी उसी गवर्नर को, उसी काजी को पसंद करते थे जो इनसे राय लेता था, जो इनसे मशवरा लेता था, और जो इनसे मशवरा नहीं लेता था, जो गवर्नर भी, उसको अहले मदीना भी पसंद नहीं करते थे। मदीना में उस वक्त बड़ी फरावानी के साथ दौलत, मालो दौलत की रेल पेल थी, कि उनके बाद में भी, हज़रत उमर के बाद भी जब बनी उमैया का दौर आया तो मदीना में उन्होंने बहुत माल और असबाब लुटाया। वो बहुत चाहते थे कि मदीना वाले हमें पसंद रखें, लेकिन हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला हमेशा इन चीजों से दूर रहे। उनको जो खुलफा आते थे बहुत माल देने की कोशिश करते थे, लेकिन ये कबूल नहीं करते थे। एक साल ऐसा आया कि खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की स्टोरी में, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो था वो हज करने के लिए मक्का आया। जब उसने तवाफ शुरू किया तो सालिम बिन अब्दुल्ला को देखा कि वो काबा की तरफ रुख किए हुए बड़े खुशू खुजू से कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, आंखों से आंसुओं की बरसात लगी। खलीफा जब तवाफ से फारिग हुआ तो इनकी तरफ रुख किया, लोगों ने रास्ता बनाया कि हजरत सालिम तक पहुंच जाए, तो वो जाके इनके साथ बैठ गया। इनको कोई खबर नहीं, ये दुनिया से बेनियाज जिक्रे इलाही में मशगूल थे। तो देखते रहे कि ये तिलावत कर रहे हैं और उनका रोना धोना जारी रहा। जब फुर्सत का लम्हा आया, जब उन्होंने अपनी तिलावत खत्म की तो इसने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर खलीफा ने बड़ी आहिस्ता से पूछा कि आपको कोई जरूरत हो तो बताएं ताकि मैं उसको पूरा करूं। सद सालिम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। खलीफा समझा शायद मेरी बात नहीं सुनी, उसने थोड़ा और आगे बढ़ के कान में कहा कि मेरा दिल चाहता है कि आप मुझसे किसी जरूरत को पूरा करने का मुतालबा करें, मुझे कोई काम बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपका काम करके। तो सालिम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के घर में बैठ के किसी और से मांगू। खलीफा यह जवाब सुन के बड़ा शर्मिंदा हुआ, खामोश हो गया, लेकिन इसी जगह बैठा रहा। जब नमाज अदा कर ली और सब हरम से बाहर निकले, तो उसने देखा कि इनके गिर्द लोगों का एक हजूम है। कोई आपसे हदीस पूछ रहा है, कोई आपसे फतवा पूछ रहा है, कोई दुनियावी मामलात में नसीहत पूछ रहा है, कोई दुआ के लिए कह रहा है। इस भीड़ में खलीफा भी था, लोगों ने उसके लिए रास्ता बनाया। अब वो फिर आया हजरत सालिम के करीब और कहने लगा, अब तो हम मस्जिद से बाहर आ गए, अब आप अपनी कोई जरूरत बता दें कि मैं उसको पूरी करूं। तो सालिम ने पूछा, क्या दुनिया की कोई जरूरत बताऊं या आखरत की? खलीफा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, दुनिया की बताएं। फरमाया, दुनिया की जरूरत तो मैंने कभी दुनिया के हकीकी मालिक से भी नहीं मांगी, वो बिन मांगे मेरी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। मैंने उससे नहीं कभी मांगी तो फिर तुमसे क्यों मांगू? खलीफा शर्मिंदा हुआ और लौट गया और कहने लगा, ए आले खत्ताब, जोहद और तकवा ने तुम्हें कितना खुद्दार बना दिया, तुम्हें कितना बेनियाज और गनी कर दिया। इस सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से पहले वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब हज किया, तो लोग जब अरफात से पलटे तो खलीफा ने इनको देखा, तो बड़ा ताकतवर जिस्म, खूबसूरत जिस्म, तो एहराम में थे तो पूरा जिस्म ढांपा हुआ नहीं था। तो उसने देख के कहा, क्या आपका जिस्म बड़ा खूबसूरत है, क्या खाते हो? फरमाया, रोटी और तेल, कभी गोश्त मिल जाए तो वो भी खा लेता हूँ। खलीफा ने हैरान होके पूछा, बस रोटी और तेल पे गुजारा चलता है? फरमाया, हाँ। तो वो खलीफा ने पूछा, फिर आप उसको शौक से खा लेते हैं? फरमाया, अगर भूख नहीं होती तो मैं हाथ ही नहीं लगाता, जब बहुत भूख लग जाती है तो बड़े शौक से खाता हूँ। सुभान अल्लाह, सालिम बिन अब्दुल्ला का जो जुहद और तकवा था ना, अपने दादा से बहुत मिलता था। हक बात कहने में कभी शर्माते नहीं थे, डरते नहीं थे, चाहे हालात कैसे ही हों। एक दफा मुसलमानों के किसी काम के लिए हज्जाज बिन यूसुफ के पास गए। हज्जाज, आपको पता है ना कितना जालिम था। तो हज्जाज ने बड़ी इज्जत से इनको बिठाया। थोड़ी देर के बाद हज्जाज के पास कुछ लोग बेड़ियों में जकड़े हुए आए, जिनके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म गुबार आलू थे, चेहरे जर्द हो चुके थे। हज्जाज ने सालिम की तरफ देखा और कहने लगा, ये बागी हैं, फसादी हैं, इनका खून बहाना जायज है। फिर सालिम को तलवार दी और कहा कि आप खड़े हो जाएं और इनकी गर्दनें उड़ा दें। सालिम ने तब तलवार हज्जाज के हाथ से ली और उस शख्स की तरफ कदम बढ़ाया। अब लोग हैरान हैं, टिकटिकी बांधे देख रहे हैं कि अब होगा क्या। जब उस आदमी के पास आए तो उससे पूछा, क्या तुम मुसलमान है? उसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन तुझे इससे क्या, तुझे जो हुक्म दिया गया तू वो कर दे। सालिम ने उनसे पूछा, क्या तूने आज सुबह नमाज पढ़ी है? उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं मुसलमान हूँ और तुम पूछते हो कि मैंने सुबह की नमाज पढ़ी। आपका क्या ख्याल है कि कोई मुसलमान नमाज छोड़ सकता है? सालिम ने कहा, मैंने तुझसे पूछा है क्या तूने सुबह की नमाज पढ़ी है? उस आदमी ने बड़े बेबाकी से कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे। मैंने कहा, हाँ मैंने पढ़ी है। अब जो तुझे हुक्म दिया गया वो कर, वरना हज्जाज का जुल्म और सितम का सामना तुझे करना पड़ेगा। हजरत सालिम हज्जाज की तरफ पलटे और तलवार उसके सामने फेंक दी और फरमाया, ये आदमी कहता है कि वो मुसलमान है और वो ये भी कहता है कि उसने आज सुबह की नमाज पढ़ी है, और मुझ तक हदीस पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा कर ली वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। मैं कैसे एक ऐसे आदमी को कत्ल करूं जो अल्लाह की हिफाजत में आ चुका? अज्जाज ने गज़बनाक अंदाज में कहा, हम इसको सुबह की नमाज छोड़ने पे कत्ल नहीं कर रहे, हम इसे ऐसे जुर्म में कत्ल कर रहे हैं कि इसने एक कत्ल में मदद की है। और हमारे नजदीक ये जुर्म नाकाबिले माफी है। तो हज़रत सालिम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझसे और तुझसे बढ़कर ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस खून का बदला ले सकती है। जज खामोश हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। और एक आदमी जो उसी मजलिस में था, उसने जब ये सारा कुछ देखा तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत सालिम के वालिद हैं उनके पास गया और सारा वाक्या जाके बताया। वो अभी बता रहा था तो झट से बोले, बताओ मेरे बेटे ने हज्जाज के हुक्म के तामील की या नहीं। उसने कहा कि नहीं, आपके बेटे ने इनकार कर दिया। ये सुन के वो बहुत खुश हुए। हजरत तो उमर बिन अब्दुल अजीज, आपको पता ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? अब तो हमने उनकी स्टोरी भी पढ़ ली। और आपको पता है कि इनकी जो वालदा थी वो उनके दादा हैं, हजरत उमर इनकी वालदा के दादा हैं। और सालिम कौन है? इनके दादा हजरत उमर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वालदा के दादा थे। यानी ये हजरत उमर के दो बेटों की औलादे हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब वो खलीफा बने तो सालिम बिन अब्दुल्ला की तरफ खत भेजा कि अल्लाह ताला ने मुझे खिलाफत के इम्तिहान में डाल दिया, ना किसी ने मुझसे मशवरा किया, ना मैंने इसका कभी मुतालबा किया। मैं अल्लाह ताला से इल्तजा करता हूँ कि इस इम्तिहान में मेरी मदद करे। आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में जो भी फैसले किए उनके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं उनसे सीखूं, मैं उनके नक्शे कदम पे चलूं। तो हज़रत सालिम ने उनको जवाब में लिखा कि आपको ये अच्छी तरह पता है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं और उमर बिन खत्ताब जिस दौर से गुजरे हैं वो बहुत मुख्तलिफ दौर है। उनको जो लोग अपने इर्द गिर्द मिले वो फर्क थे और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कोई और है। लेकिन ये बात जान लें अच्छी तरह कि आपने अगर हक की नीयत की है तो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा और आपको ऐसे लोग दे देगा जो आपके हाथ मजबूत करें, और वहां से ऐसे लोग भेजेगा जिनका आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। कितनी बड़ी नसीहत की बात है। फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद उसकी नीयत के मुताबिक करता है। जिसकी नीयत खैर की हो और खालिस हो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, और जिसकी नीयत में फतूर और कोताही हो उसकी मदद भी उसी हिसाब से होती है। तो फरमाया, अगर कभी तेरा दिल किसी ऐसी चीज की तरफ मायल हो जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो अपने से पहले बादशाहों को याद कर लेना जो दुनिया से चले गए, कि उनकी आंखें किस तरह से फोड़ दी गईं जो लज्जतों और रानाइयों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करती थी, उनके पेट कब्र में किस तरह फटे पड़े हैं जो शहवात और लज्जात से भरे होते थे, उनके मुर्दा जिस्मों को याद कर लेना कि अगर उनके जिस्म हमारे घरों के पास लाके रख दिए जाएं तो उनकी बदबू से हमारा जीना हराम हो जाए। ये हैं वो बादशाह। कितनी प्यारी नसीहत है। इनकी सारी उम्र तकवे की हालत में गुजरी, दुनिया की जेबो जीनत से बिल्कुल अलग थलग रहने वाले सादा जिंदगी, अल्लाह ताला की रजा को हर वक्त पेशे नजर रखा। सादा खाना खाते थे, सादा लिबास पहनते थे, मुसलमानों की ज़रूरतें पूरा करने में इनको बहुत शौक था, और लोगों से ऐसी शफकत रखते थे जैसे माँ अपनी औलाद से रखती। जब ये 106 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हुए तो मदीना का हर फर्द रो रहा था और हर कोई गमनाक था। तमाम लोग दीवानावार जनाजे के पीछे हो लिए और दफन तक हाजिर रहे। इस जनाजे में खलीफा उस वक्त था हशाम बिन अब्दुल मलिक, वो मदीना में ही था, वो भी जनाजे में शरीक हुआ। जब उसने लोगों का इतना रश देखा तो उसके दिल में बड़ा रश्क पैदा हुआ। दिल में सवाल करने लगा, अगर खलीफा फौत हो जाए तो क्या लोग इतने ही शौक और जौक से जनाजे को कंधा देने के लिए घरों से निकलेंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको इनकी जिंदगियों में भी फिर इज्जतें दी, और देखें आज तक इनके नाम इज्जत से लिए जाते हैं। जो लोग अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगियां लगाते हैं ना, वो रहती दुनिया तक उनके नाम भी जिंदा रहते हैं, और जो अपनी खातिर जीते हैं उनके नाम भी मिट जाते हैं। तो बहुत सबक है इनकी जिंदगियों में। आज का जो एक आप लोगों से दरख्वास्त होगी वो ये कि जरूर इस इन दिनों में जो जितना ये अब टाइम रह गया, हम भी अपना जायजा लें, हम किधर खड़े हैं तकवा में, किधर खड़े हैं हम इनकी जिंदगियों से, सिमिलर हमारी जिंदगियां कितनी हैं, कितनी है उनके अंदर सादगी है, या कितने उनके अंदर तकवा है, कितनी खुदा खौफी है, कितना लोगों की हेल्प करना है, कितना ये चीज के मालदारों या बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी सोबतों में बैठना सिर्फ इसलिए कि ये बड़े लोग हैं, ये मालदार लोग हैं, इसका कितना शौक है। देख रहे हैं आप इनकी लाइफ में, इनको कभी भी खलीफा बड़े बड़े बुलाते थे, बड़े बड़े लोग इनको अपने साथ रखना चाहते थे, उनसे इनको कोई रग़बत नहीं थी, उनसे दूर रहते थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी दिन ख्याल आ जाए ना कि मैंने नेक बनना, तो आपको अपनी मजलिसें बदलनी पड़ेंगी, अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं कि जिनके साथ रह के दिल में अल्लाह की याद पैदा हो, जिनके साथ बात करके कुछ इल्म में इजाफा हो, जिनके अमल से आखरत याद आती हो, अपने अमल में भी तेजी आए। तो अपना जायजा लेते रहें, अपना हिसाब किताब करते रहें, इससे पहले कि हमारा हिसाब हो, हम अपना हिसाब क्यों ना खुद कर लें, कितने हम अल्लाह ताला से करीब हो रहे हैं, कितने हम जहन्नम से दूर हो रहे हैं, कितनी नियतें हमने बांधी हैं कि रमजान के बाद मैंने ये काम करने हैं, कितने काम हैं जो मैंने अभी शुरू किए हैं और मैं सोचती हूँ मैंने नियत कर ली कि मैं रमजान के बाद भी इनको कंटिन्यू करूंगी। तो ये चीजें अपने जायजा लेने से ना इंसान को फायदा होता है। और कोशिश करें कि ये कुछ चंद एक नेकियां हैं इनको जरूर कर लें। वो क्या है? खाना खिलाना, पानी पिलाना, बीमार की इयादत करना, ये बहुत बड़ी नेकियां हैं, बहुत बड़ी नेकियां हैं। इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। बंदा कहेगा, है परवरदिगार, मैं आपकी बीमार पुरसी कैसे करता, आप रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तेरे सामने फलां बंदा बीमार नहीं हुआ, तो तू उसकी अगर बीमार पुरसी करता तो मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। कहेगा, या अल्लाह, तुझे मैं कैसे खाना खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता मेरे फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, परवरदिगार, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फलां बंदा प्यासा था, तूने अगर उसको पानी पिलाया था तो मुझे उसके पास पाता। बड़ी मतलब गौर व फिक्र करने वाली हदीस है कि अल्लाह ताला अपने मोहताज बंदे की बीमारी को, उसकी भूख को, उसकी प्यास को अपनी भूख और प्यास फरमाता है, हालांकि वो रब्बुल आलमीन है, उसकी हस्ती तो इन सारी चीजों से पाक है, बाला तर है, लेकिन बीमार की आदत, मोहताज को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, इतनी यानी बड़े अमल हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अपनी तरफ मंसूब किया, और इनमें बीमार की इयादत को उस सबसे टॉप पे उलमा रखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यही आई है, इसका मतलब सवाब सबसे ज्यादा है, और भूखे को खाने खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इनका भी बहुत अजर व सवाब है, इनसे अल्लाह की रजा हासिल होती है, बंदा अल्लाह ताला से करीब हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत बंदे के ऊपर साया फगन हो जाती है। और ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने दुखी बंदों के कितना करीब होता है। लोग सोचते हैं ना कि हाय मैं बीमार हो गया, मेरे या मैं भूखा हूं या मैं प्यासा हूं, पता नहीं अल्लाह को मेरी परवाह है या नहीं, नहीं, अल्लाह ताला अपने उन बंदों के करीब होता है जो बेबस हैं, जो टूटे दिलों वाले हैं, जो मोहताज हैं, अल्लाह ताला उनके बहुत करीब होता है। इसीलिए कहा गया, जब बीमार की इयादत करने के लिए जाओ तो उनसे दरख्वास्त करो कि आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह उनसे बहुत करीब होता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये अमल करें। इसी तरह सहरी जरूर खाएं, सहरी करने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं सहरी करने वालों के लिए दुआ करते रहते हैं। अब आप सहरी खा रहे हैं, आपके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात है। और सहरी का मतलब ये नहीं जरूरी कि आपने पराठे ही खाने तो सहरी होगी, पानी का ग्लास भी पी लेंगे सहरी हो गई। तो ये भी अमल ऐसा है जिससे आप फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं। इसी तरह आज का दिन जो हमने गुजारना है वो शुक्रगुजारी का दिन गुजारना है। वैसे तो मोमिन हमेशा शुक्रगुजार रहता है, हमेशा। और शुक्रगुजारी उसकी पर्सनैलिटी में होती है, लेकिन कभी कॉन्शियसली भी हमें शौरी तौर पे भी देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी नेमतें हैं, और इससे इंसान के दिल को बड़ा ही सुकून मिलेगा। और ये वो अमल है जो अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला इसकी वजह से नेमतों में इजाफा फरमा देते हैं, और जो पहली नेमतें होती हैं ना अल्लाह ताला उनको भी बाकी रखता है। तो इसलिए नेमतों का एहसास करना, दिल से एहसास करना, और इसमें अपनी जुबान से भी इसका इजहार करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और अपने अमल से भी दिखाना कि अल्लाह मैं तेरी नेमत की कितनी कदरदान हूं, कि तेरी नेमत को तेरे रास्ते में लगाते, ये शुक्रगुजारी है। तो सारा दिन में आप हर वक्त नहीं भी कर सकते, तो एंड ऑफ एवरी आवर ही आप देख लें, कि हर घंटे में देख लें कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें फरमाई। ये आंखों की नेमत, ये कानों की नेमत, लिख रही हैं तो मुझे लिखना सिखा दिया, बोल रही हूं तो बोलना सिखा दिया, और खा रही हूं तो है अल्लाह तूने खाना भी दे दिया, और खाना भी मुझे खाने की तौफीक दे दी, अमनो अमान की नेमत। आपके सामने आज फलस्तीन में जो पिछले दिनों वाकया हुआ, गोलियां चल रही हैं, मस्जिद में लोग हैं, और आप देखें कि कैसे वो बेचारे लोग रमजान के महीने में भी किस तरह अपनी जानों को बचाने के लिए भाग रहे। मैं और आप ऐसी जगहों पर रह रहे हैं कि जहां पे हमें जान का खतरा नहीं, अमनो अमान है। तो नेमतों को गिनते जाएं, इससे मोहसिन की मोहब्बत दिल में आती है। वो जिसने ये सब अता किया है वो चाहे तो इनको वापस ले ले, क्योंकि ये इनमें से कोई चीज भी हमारी अपनी नहीं है। लिहाजा शुक्र गुजारी वाला रवैया, और हर वक्त डरते रहें अल्लाह नेमतों के जवाल से बचाना। आज की जो दुआ है वो भी इसी तरह की है। जितना ज्यादा कोई नेमतों में ना, और हर कोई हम में से नेमतों में, कोई ये नहीं कह सकता नहीं मेरे पास नहीं कोई नेमत, यही तो नाशुक्री है, यही नाशुक्री कि इंसान को ये एहसास ही ना हो कि मेरे पास कितनी नेमतें, वो बस एक चीज जो नहीं मिली हर बात उसका ही रोना रोते रहे, ये नाशुक्री है। ये नाशुक्री कि इंसान के पास खाने को है, पीने को है, सेहत है, ईमान है, और वो बस रोता ही रहे, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे नहीं कुछ मिला, मैं बड़ा बदकिस्मत। ऐसे इंसान का कभी पेट नहीं भरता फिर। तो दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमत, के अल्लाह नेमतों के ज़वाल से मुझे अपनी पनाह में ले ले, के अल्लाह मुझे नेमतों के ज़वाल से बचा लेना, नेमतें मुझसे छिन ना जाए, व तहव्वुली आफियतिक, और आफियत के छिन जाने से। यानी आप देखिए, हम उस वक़्त से हमने दुआ भी मांगी थी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, यानी भलाई दुनिया और आखिरत की भलाई देना। तो अल्लाह ये जो आफियत हमें मिली भी है ये भी बदल जाती होती है, दिन बदलते देर नहीं लगती, आज कोई कहीं है कल कुछ और हो जाता है, अल्लाह रहम फरमा दे। तो अल्लाह आफियत के बदल जाने से, व फुजाअत निकमतिक, और अल्लाह अपनी सजा के अचानक आ जाने से, वह जमी इसखतिक, और अल्लाह अपनी हर किस्म की नाराजगी से मुझे बचा के रखना, मुझे अपनी पनाह में ले लेना। ये बहुत ही प्यारी दुआ है, इसके अंदर वो सारी ही चीजें जिनसे इंसान डरता है ना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो हम खुद तो बच नहीं सकते, हम कितने कमजोर हैं, तो हम क्यों ना उसकी पनाह ले लें जो सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसकी पनाह में जो आ जाए तो वह फिर बेसहारा नहीं होता। तो ये दुआ जरूर मांगा करें कि डर लगता है, अल्लाह नेमतें तूने ही दी हैं, वे भी नेमत अल्लाह ने छीन दी, हम तो एक भी नेमत के शुक्र गुजारी नहीं कर सकते, बल्कि हमारे मुंह से नाशुक्री के बाज़ औकात इतने कलिमात निकल जाते। तो इसलिए नेमतों की शुक्र गुजारी की आदत बना लें और अल्लाह ताला से डर डर के हमेशा ये दुआ करते रहें। आज का जो जिक्र है, पहले तो आपको ये बता दूं, जिक्र अल्लाह ताला का जिक्र जो है ना, ये इतनी बड़ी चीज है, इसके इतने फायदे हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के जिक्र से बढ़ के किसी आदमी का कोई अमल अजाबे कब्र से ज्यादा निजात देने वाला नहीं है। नहीं, जिक्र इलाही जो है ना, यही कब्र के अजाब से भी बचाने वाला है। तो आज का जिक्र भी बड़ा ही प्यारा है, खास तौर पे जब हम कुछ ज्यादा नहीं इबादत कर सके, तो ये जिक्र आप थोड़ा सा भी करेंगे तो बहुत काफी है। हजरत जुवेरिया जो है उम्मुल मोमिनीन, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के वक्त मेरे पास से नमाज के लिए तशरीफ ले गए और मैं उस वक्त अपने मुसल्ले पे बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाश्त की नमाज वगैरह पढ़ के दिन चढ़े जब वापस तशरीफ लाए, तो मैं उसी तरह बैठी हुई थी। तो आपने पूछा कि तुम इसी हाल पे हो जिस पे मैं छोड़ के गया था? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया, मैंने तुमसे जुदा होने के बाद चार कलिमात 3 दफा पढ़े, अगर उनको इस सब के मुकाबले में तोला जाए जो तुमने सुबह से पढ़ा है, तो वो गालिब हो जाएंगे, यानी वो ज्यादा भारी है। वो कलिमात के हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, आदद खलकी, वरिदा नफसी, व जीनत आरशी, व मिदाद कलिमाती। मैं अल्लाह की तस्बीह करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ बकदर उसकी मखलूक के अदद के, जितनी उसकी मखलूक है उतनी, और उसकी मर्जी के और उसकी खुशनुदी के, इतनी अल्लाह की तारीफ करती हूँ जिसे वो खुश हो जाए, और जितना उसके अर्श का वजन है और जितने उसके कलिमात की मिकदार है, मैं इतनी अल्लाह की तारीफ करती हूँ। अल्लाह अकबर, तो कितनी ज्यादा अल्लाह की मैं उतनी तस्बीह करती हूँ, मैं उतनी दफा सुबहान अल्लाह कहती हूँ। अब आप बताएं ये कितनी गिनती हो गई, इसको तो हम गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए इन कलिमात को 3 दफा सिर्फ कहना है, ज्यादा भी नहीं है, तो इनको जरूर शामिल करें अपने सुबह के अजकार में, शाम के अजकार में, या जब भी आपको फुर्सत मिले, घंटों की इबादत से ये कलिमात ज्यादा भारी है। ये मतलब नहीं कि आप घंटों इबादत ना करें, लेकिन यानी इनका इतना ज्यादा सवाब है, सुबहान अल्लाह। तो इनको याद कर लें, इन कलिमात को, बहुत प्यारे कलिमात हैं, और इंशाल्लाह शामिल करें अपनी रोज़मर्रा इबादत के उसमें। अच्छा, फिर एतकाफ़ का आप लोगों ने पूछा था, मैंने बताया भी है कि एतकाफ़ जो है वो सिर्फ मस्जिद में होता है। अगर आपके पास बच्चे हैं या ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि आपको घर में सहरी इफ्तारी बनानी है, तो आप फिर इतकाफ ना बैठे ना, फिर अभी आपके लिए ये इबादत नहीं है। जब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए तब बैठ जाइएगा, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करें, इसलिए कि इबादत जो इतकाफ करने वाला है वो फरिश्तों के मुशाबे हो जाता है। फरिश्ते भी तो सिर्फ इबादत ही करते रहते हैं, तो वो फरिश्तों के मुशाबे हो जाता है। ये बड़ा ही सवाब का काम है। इस तरह मैंने आज आपको इसमें आजम बताना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आजम जो है वो 2 आयतों में है, 2 आयतें हैं जिनके अंदर इसमें आजम है, और एक सूरह बकरा में, एक आले इमरान में है। तो जब आप दुआ मांगने लगे इन इन आयतों को अगर पढ़ लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको इंशाल्लाह ताला इसमें आजम के साथ आपको मांगी हुई दुआ कबूल होती है। एक क्या है, वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान रहीम, और दूसरी अलिफ लाम मीम जो स्टार्ट होती है सूरह आले इमरान, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस, तो ये पहली 2 आयतें आले इमरान की और सूरह बकरा की, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद वाली। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी जो भी छोटी मोटी इबादत है इसका ही अल्लाह ताला इसकी वजह से ही हमारी सबकी बख्शिश कर दे और हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।